to their most godly and imaginable nature. God's confidence.
ان پانچ باتوں پر عمل کا اہتمام کر لیں. نمبر ایک کام یہ کہ قرآن پاک کو درست کرو. مسلمان کا رشتہ قرآن پاک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا, اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن درست نہیں پڑھتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. یہ سب ناکامی کی بات ہے. اور کتنے خوشبخت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں, اچھا بھی پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ صرف قرآن پاک برکت کے لیے گھروں میں سجانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن پاک, اب کچھ طبقے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دھوکہ بھی ڈالتے ہیں. مثلا ایک نے کہا کہ عمل نہیں کرتے تو پڑھنے کا کیا فائدہ. اور کوئی اگر پڑھ رہا تو اس کو کہتے ہیں عمل تو کرتے نہیں ہو, پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک پڑھنا یہ خود مطلوب ہے, یعنی قرآن پاک کی تلاوت یہ خود بھی مطلوب ہے. یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اگر اس کی صرف تلاوت بھی کی جائے اور بغیر سمجھے بھی, تو اس بغیر سمجھے تلاوت پر بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. یہ مستقل عبادت ہے. بلکہ قرآن پاک اور کلام اللہ تو ایسی چیز ہے, قرآن مجید قرآن کریم تو ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے, جس کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. اس لیے اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے اگرچہ سمجھ میں نہ آئے. یہ اور بات ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ سمجھنے کی فکر اور کوشش کرے, اور سمجھنے کی فکر اور کوشش یہ ہے کہ شریعت و سنت پر عمل کرتا رہے. اور اس کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ کسی اللہ والے سے عالم سے دینی رہنمائی لیتا رہے, مسائل پوچھتا رہے اور عمل کرتا رہے. یہ قرآن پاک کا حق ہے ہم پر. اور حدیث شریف میں آئے کہ تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ, قرآن پاک سے برکت حاصل کرو, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالی کی ذات سے نکلا ہوا یہ اللہ کا کلام ہے, اس سے برکت حاصل کرو. قرآن پاک رکھنا بھی بابرکت ہے, اس کو پڑھنا بھی بابرکت ہے, اور اس پہ عمل کرنا یہ بھی بابرکت ہے. اور قرآن پاک کو درست کرنے کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ ہر چیز اگر کسی کی زبان کو غلط بولا جائے تو اگلا ہنستا ہے, بعضوں کو غصہ بھی آتا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, غلط پڑھا جائے تو کیا حال ہوگا. اور دیکھیے کہ کوئی قاری اللہ تعالیٰ نے جس کو اچھی آواز بھی عطا فرمائی ہو, وہ قاری اچھی آواز کے ساتھ عمدگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھے کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ایک توقع وہ بھی ہے कि जो कुरान पाक की उमदगी को नहीं समझता, अब सिर्फ आवाज की खूबसूरती को समझता है, कि जिसने जरा लय लगा दी का बहुत अच्छा पढ़ता है। अब वो उमदगी ये थी कि चाहे आवाज सादा हो, हमारे बुजुर्ग ऐसे कि जो सादगी से कुरान पाक पढ़ते थे लेकिन उमदगी से पढ़ते थे। और उमदगी कुरान पाक की है कि उसके हरूफ को की अदाई को अदायगी को समझा जाए कि किस हर्फ को कैसे अदा कर रहा है, और गुन्ना मद वगैरह कहीं हर्फ को मोटा पढ़ना होता है, कहीं उसको पतला पढ़ना होता है। जैसे कुरान आप भी मोटा और रा को भी मोटा, जिक्रिल्ला रा यहां पतला हो गया। तो ये चीजें सीखने की है, और इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरा हजरात कारी हजरात को रखा है, कि जो कुरान पाक को सिखाने वाले हजरात हैं उनसे कुरान पाक को सीखे। रोजाना अगर मेरे शेख फरमाया करते 10 से 15 मिनट भी दे दो, इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में कुरान पाक से कुछ मुनासबत पैदा हो जाएगी, कुछ लगा समझ में आने लगेगा। किसी के पास वक्त हो तो असर की नमाज के बाद यहां भी पढ़ सकता है, काजी साहब मौजूद है उनसे पढ़े। और दूसरी बात, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे एक मुट्ठी दाढ़ी रखो, क्योंकि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये वाजिब है, मुसलमानों को दाढ़ी रखना ये वाजिब है, और एक मुट्ठी से कम करना चाहे चावल के दाने के बराबर हो हराम और गुनाह। किसी की दाढ़ी न निकले वो और बात है। हमारे शेख के एक पीर भाई थे डॉक्टर करार साहब, बहुत मिजाही आदमी थे। हजरत उनके तशरीफ ले गए थे, मैं भी साथ में था। उनके एक रिश्तेदार थे जो कि दर्जी ने दाढ़ी नहीं रखी, तो डॉक्टर साहब हजरत से कहने लगे कि हजरत ये देखिए ये हमारे रिश्तेदार हैं, चाइना नस्ल के हैं, इनकी दाढ़ी नहीं निकलती। हंस के कहने लगे कि हजरत ये हमारे रिश्तेदार चाइना नस्ल के, इनकी दाढ़ी नहीं निकलती, चाइना के लोगों के एक एक बाल लाइक शान नहीं निकलती। बहरहाल खुद ना काटे ना निकले कोई बात नहीं, कहते अल्लाह मियां मुझे चिकने गाल पसंद है, मेरी दाढ़ी ना निकालिए, खुद ना काटे। और मेरे शेख फरमाया करते थे बाकी रहा दाढ़ी ना रखने की बात, ये शौक जन्नत में पूरा हो जाएगा, कि वहां जुर्दन मुर्दन होंगे, दाढ़ी मूछ नहीं होगी। जैसे 18 साल का लड़का होता है बिल्कुल दाढ़ी मूछ भी नहीं, लेकिन 18 साल वाले लड़के को जाके गौर से ना देखना, तो उसको देखना हराम है। और दाढ़ी अपनी मुट्ठी से नापे, सामने से भी दाएं से भी बाएं से भी हर तरफ से एक मुट्ठी हो, और जब एक मुट्ठी से ज्यादा हो जाए तो मुट्ठी में पकड़े और जो ज्यादा हो उसको कैंची से काट दे। ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, दाढ़ी जिसको बनाना कहते हैं ये भी सुन्नत है। इसके साथ मूछें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कतराओ। बाज जगह हलक का भी लफ्ज आया कि यानी बहरहाल जो अल्फाज है अनहिकु वाहफु वाहफु शवारिब अनहिकु शवारिब इन कस्सु शवारिब, इन तमाम अल्फाज का हासिल है कि गोया इतनी मूछों को काटा जाए बिल्कुल बारीक कर दे, इतना ये सुन्नत तरीका है कि मूछे ना हो और दाढ़ी हो, मूछों को काट दे, ये सुन्नत तरीका है। मुसलमान को सुन्नत पर ही अमल करना चाहिए, असल तो यही ना कि दीन जिंदगी में लाना मकसूद है, अमल में मुसलमान को इसी पर अमल करना चाहिए। गो कि अगर कोई ये मूछ रखता है और ये किनारा खुला रखता है उसके लिए जायज तो है, लेकिन किसी को आमदनी अगर 10,000 हो और किसी को 15,000 हो तो 15,000 वाली इख्तियार करेगा, 10,000 वाली नहीं करेगा। तो एक है जायज और एक है 10,000 में उसकी सब रोटी चल जाएगी कि जी रोटी खाना पूरे महीने का हो जाएगा, और 15,000 में नस्वार के पैसे भी मिलेंगे। तो देखिए ना इजाफी हुआ ना, कभी कभी बोतल भी पी सकेगा, मोबाइल में वो क्या क्या स्मार्ट कार्ड क्या है वो सुपर कार्ड, अपने उसमें सुपर कार्ड भी डाल सकेगा महाना, जिसमें पता नहीं कितने मिनट फ्री और SMS और इंटरनेट पता नहीं क्या क्या। जो लोग जिनको इंटरनेट की स्पेलिंग शायद ना लिखनी आती हो वो भी इंटरनेट चलाते हैं, अंग्रेजी में शायद ना लिखना आता हो कि इंटरनेट की क्या स्पेलिंग है, तो इंटरनेट चलाना वो भी जानते हैं। अजीब। तो बहरहाल एक मुट्ठी दाढ़ी हो, अपनी मुट्ठी से मूछों को बारीक कर दे। तीसरा काम ये करे, अपनी शलवार टखने से ऊपर रखे, मर्द के लिए खड़े होने की हालत में और चलने की हालत में शलवार को टखने से नीचे लटकाना हराम और गुनाह कबीरा है, छोटा नहीं बड़ा गुनाह है। यानी ऐसा गया गुनाह के जिस पर जहन्नम की वाइद है कि जहन्नम में डाला जाएगा, ऐसे गुनाह को गुनाह कबीरा कहा जाता है, इसलिए इससे भी बचे। औरतों के लिए छुपाने का हुक्म है, मर्द के लिए ऊपर रखने का हुक्म है। और ये मसला सिर्फ नमाज के लिए नहीं है बल्कि गैर नमाज में भी ऐसे ही होना चाहिए कि शलवार से मालूम। चौथी चीज मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नजर की हिफाजत करो। ये नजर ऐसी चीज है कि इंसान जो नजर से देखता है ना वो दिल में उतर जाता है, और दिल जिसका फंस गया हो किसी जुल्फे यार में। अभी ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ ना तो किसी मौके पर ही शेर पड़ा, मैंने कहा इसका तर्जुमा करो अंग्रेजी में, कहने मुश्किल है, बाद शेरों का अंग्रेज तर्जुमा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो अंग्रेज हैं वो तो जुल्फे रखती नहीं है, तर्जुमा कैसे हो परकटी। लेकिन दिल जिसका फंस गया हो किसी जुल्फे यार में, क्या लगेगा जी उसका किसी कारोबार में। अब आप तस्वुर करें, बुढ़े हैं, बड़े मियां 90 साल उम्र है, उनकी बीवी की उम्र तकरीबन होगी यही 4-5-6 साल छोटी, वो इस उम्र में उसको तलाक दे के दूसरी शादी करने की दर पे यूं हिलते हुए जाते हैं, एक झटका लगे कब्र में बस, खतरनाक चीज है। इसलिए ये ना करें कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब तो मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए, अब तो मैं नहीं नहीं, नहीं। नफ्स जो है ना ये किसी वक्त नहीं छोड़ता, किसी वक्त नहीं छोड़ता, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जैसे हमारे कराची में कहते हैं ना बड़ी फिल्म है, और एक लफ्ज और भी इस्तेमाल किया जाता है गरामी, नफ्स बड़ा गरामी होता है, समझ गए ना क्या मन ऐसी चीज है, इसके तकाजे ऐसे। ये बुढ़े आलिम गैर आलिम तबलीग में बरसा बरस रहा हो, खानका में जिंदगी गुजारती हो, लेकिन ये साला वही का वही रहता है, ऐसी चीज इसे इसके चक्कर में ना आए, नजर बचाए। जब अल्लाह का हुक्म है कि नजर बचा लो तो अल्लाह पर नजर रखे, ये ना देखे हमारा दिल टूटेगा, बल्कि ये सोचे कि अल्लाह ताला के हुक्म इतना कीमती है कि उसकी खातिर हमारा दिल टूट रहा है, हमारे लिए कितना बड़ा एजाज है। तो नजर बचाए, मत देखे, लड़कों से भी बचे, अल्लाह के लिए ये बात कहता हूं। ये मजमून पेश करने में लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, एतराज करते हैं कि क्यों कहते हो, लेकिन शरीयत का हुक्म है ये, कोई किसी का हुक्म नहीं है, ये मेरे घर का बनाया हुआ मसला नहीं है, ये शरीयत का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है कि लड़कों से भी नजर बचाओ, मत देखो किसी लड़के को और उनकी कुर्बत मत इख्तियार करो। जिन्होंने इस पर अमल किया अल्लाह उनकी इज्जत से जिंदगी गुजरे, लड़कों से ही बचो औरतों से। और पांचवी बात मेरे शेख फरमाते हैं, दिल है दिल, हमारी अल्लाह का घर है, बारूमी फरमाते हैं कि मैं नहीं समाता, लेकिन मोमिन के दिल में हम चुज़ैफ मिस्ल मेहमान के आ जाता हूँ। कल मोमिन के दिल को अपना ठिकाना बना लेता हूँ। तो ये दिल अल्लाह का घर है, किसी के घर में किसी को नहीं घुसना चाहिए ना, तो बुरी बात है ना, किसी का घर और कोई और घुस जाए। अलबत्ता कोई कब्जा कर ले, अगर ताकतवर पार्टी का मकान हो क्या करेगा हाल, मार मार के डंडे मार मार के निकाल देगा। सोचो अल्लाह से बढ़कर ताकतवर कौन है, चैन से बैठेगा, ये समझेगा कि हम दिल में किसी गैरुल्लाह को बसा लेंगे, चलो घर खाली है किसी हसीन को बुला ले, हंस के बोला करो बुलाया करो, क्या कह रहे हैं, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। अगर किसी को बुला ले कि जी घर खाली है चलो बुला ले किसी को, चैन से बैठेगा, ये अल्लाह का घर है, तो अल्लाह चैन ना पा सकेगा, इसलिए दिल की भी हिफाजत करे। मेरे शेख फरमाते हैं पांच काम कर लो, ऐसा अल्लाह ताला इतना नूर अता फरमाएंगे, इसकी बरकत से पूरे दीन पर अमल करना आसान हो जाएगा, ऐसा नूर मिलेगा। तो मैं करके कैसा मजा, मेरे शेख फरमाया करते थे ज्यादा नहीं तीन दिन नजर बचाओ, कि तीन दिन एक नजर खराब नहीं करने, और फरमाया उस तीन दिन की अपनी इबादतें देख लेना, तो उस इबादत की लज्जत क्या होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मुझको भी तौफीक दे अमल की, हम सबको अमल की तौफीक दे, तक्वा वाली जिंदगी से वाखर दावा अल्लाह या अल्लाह मालिक अल्लाह।